नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। घड़ी में 8:30 बजते ही वक्त हो जाता है आपके पसंदीदा स्पोर्ट्स कार्यक्रम स्पोर्ट्स कैन का, और आज का स्पोर्ट्स कैन लेकर हाजिर हूं मैं आपके साथ शशांक। और दिन भर की सभी खबरों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट राकेश राव जी। राकेश जी, स्वागत है आपका स्टूडियो में।
बहुत बहुत शुक्रिया।
तो सिंगापुर में विश्व शतरंज चैंपियनशिप में आज चौथी बाजी भी ड्रॉ रही, मुकाबला बड़ा जबरदस्त चल रहा है वहां पे।
बिल्कुल, देखिए दोनों बहुत अच्छी तरह से प्रिपेयर्ड हैं और दोनों का जो टेम्परामेंट है मोर लेस सेम है, शांत रहते हैं दोनों, कोई ज्यादा बातें नहीं करते हैं, पूरा फोकस उनका उनके मैच पे है। तो जो हमने आज भी जैसे देखा, बहुत क्लोज कॉन्टेस्ट।
चलिए विस्तार से आपसे चर्चा करेंगे उस मैच पर, लेकिन नजर डाल लेते हैं अब तक के मुख्य समाचारों पर। लखनऊ में सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप में लक्ष्य सेन, प्रियांशु राजावत, पीवी सिंधु और उन्नति हुडा सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंचे। डबल्स में 5 भारतीय जोड़ियों ने अंतिम 4 में प्रवेश किया। सिंगापुर में विश्व शतरंज चैंपियनशिप में ग्रैंड मास्टर डी गुकेश और विश्व चैंपियन चीन के डिंग लिरेन के बीच चौथे दौर की बाजी ड्रॉ रही। ओवल में भारत और प्रधानमंत्री 11 के बीच 2 दिन का क्रिकेट अभ्यास मैच कल से। और दुबई में एसीसी पुरुष अंडर 19 एशिया कप क्रिकेट प्रतियोगिता में कल भारत का मुकाबला पाकिस्तान से। शुरुआत बैडमिंटन से करते हैं। लखनऊ में सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप में लक्ष्य सेन, प्रियांशु राजावत, पीवी सिंधु और उन्नति हुडा सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। वहीं डबल्स में 5 भारतीय जोड़ियों ने अंतिम 4 में प्रवेश किया है। सुनते हैं वैष्णवी की ये रिपोर्ट।
2 बार की चैंपियन और शीर्ष वरीयता प्राप्त सिंधु ने 48 मिनट तक चले क्वार्टर फाइनल में चीन की दाई वांग को 21-15, 21-17 से हराया। सेमीफाइनल में सिंधु का मुकाबला उन्नति हुड्डा से होगा। हुड्डा ने क्वार्टर फाइनल में मलेशिया की इशिका जायसवाल पर 21-16, 21-9 से जीत हासिल की। 2021 विश्व चैंपियनशिप के कांस्य पदक विजेता और शीर्ष वरीयता प्राप्त लक्ष्य ने हम वतन मीराबा लुवांग मैसनाम को 21-8, 21-19 से हराया। लक्ष्य का सामना अंतिम 4 में जापान के शोगो ओगावा से होगा। एक अन्य मुकाबले में दूसरी वरीयता प्राप्त प्रियांशु राजावत ने वियतनाम के गुयेन हे डंग को हराया। डबल्स में 5 भारतीय जोड़ियों ने सेमीफाइनल में जगह बनाई। महिला डबल्स में त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद तथा तनिषा कैस्ट्रो और अश्विनी पोनप्पा ने अंतिम 4 में प्रवेश किया। पुरुष डबल्स में ईशान भटनागर और शंकर प्रसाद अंतिम तथा साई प्रतीक और पृथ्वी रॉय ने सेमीफाइनल में जगह बनाई। सेमीफाइनल में दोनों जोड़ियां आमने सामने होंगी। मिक्स डबल्स में ध्रुव कपिला और तनिषा कैस्ट्रो ने भी अंतिम 4 में प्रवेश किया। वैष्णवी, स्पोर्ट्स कैन।
तो घरेलू मैदान पर लखनऊ में ये टूर्नामेंट चल रहा है और इस पर पीवी सिंधु ने क्या कहा है ये भी जरा सुन लेते हैं।
I'm coming after 2 years. Like last year, I didn't play. Before that, I've played. I couldn't play the last year because of the injury. So I think it's always nice to play here in Lucknow and home ground. So definitely, it feels great. I think for anybody and everybody, I think it's a good experience, and also you can test yourself how you are. And of course, since it's a home ground, you will have an advantage comparatively, and also at the same time pressure. But it's always good to know where you are at and to test yourself.
तो राकेश जी, टूर्नामेंट को आप कैसे देख रहे हैं और कैसे आंक रहे हैं?
देखिए, ये टूर्नामेंट काफी सालों से हो रहा है और मेरे हिसाब से ये वाला जो एडिशन है इस टूर्नामेंट का, इसका स्ट्रेंथ कोई बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि इंडियंस से उम्मीद की जा रही है कि वो जो है सिंगल्स जो है दोनों सिंगल्स जीतेंगे। मेंस डबल्स में अच्छे चांस हैं, हालांकि जैसे विमेन सिंगल्स में देख रहे हैं वैसे ही ठीक उसी तरह से मेंस डबल्स में भी वही हाल है कि जो दो इंडियन पेयर पहुंचे हैं सेमीफाइनल में वो आपस में खेल रहे हैं। विमेन सिंगल्स में भी उन्नति और सिंधु आमने सामने हैं, तो एक का हारना पक्का है और एक का फाइनल में पहुंचना पक्का है, तो ये दो चीजें हो गई हैं। लेकिन ओवरऑल जो मैं स्ट्रेंथ देख रहा था इस टीम में, इस पूरे कॉम्पिटिशन में, जो टॉप 20 के खिलाड़ी हैं उनका मैच हो रहा है जिनकी रैंकिंग 60-70 ऐसे हैं। जैसे कल अगर हम देखें कि सिंधु ने हमारे कंट्री की इरा को हराया था, जिसका कि उसकी जो रैंकिंग है वो 147 है जी। और सिंधु की 18 है। अब कहां 18, कहां 147, और उसके बावजूद सिंधु ने एक गेम ड्रॉप किया कल जी। 3 गेम्स में जीती थी, तो कहने का मतलब यह है कि सिंधु अभी टॉप फॉर्म में बिल्कुल नहीं है। उनको भी मोटिवेट करने के लिए थोड़ा एक अच्छा कॉम्पिटिशन चाहिए, वो भी नहीं मिल रहा है उनको। तो ओवरऑल ठीक है, अभी जैसे हमने सुना कि सिंधु ने कहा कि यू नो हमारा होम टर्फ है, हमको वहाँ पे इजी हो जाएगा, थोड़ा सा वो है, प्रेशर है, बिल्कुल सही है, लेकिन ये भी देखना पड़ेगा कि सिंधु जिस दौर से गुजर रही हैं, अभी इंजुरी से बाहर आई हैं, बहुत अच्छा कोई परफॉर्मेंस नहीं है, कोई बड़ी जीत नहीं है उनके पिछले एक डेढ़ साल में, तो यहाँ पे कुछ जीतेंगे, टूर्नामेंट जीतेंगे, वो कॉन्फिडेंस आएगा, उसके बाद अगले फिर यू नो जनवरी में इंडियन ओपन है, वो बड़ा टूर्नामेंट है, तो आप उसकी तैयारी अभी है, तो ओवरऑल ये टूर्नामेंट इंडिया के लिए ही अच्छा है क्योंकि जो चाइनीज आए हैं, जो इंडोनेशियंस आए हैं, उनको बहुत बहुत मतलब जो जो टॉप 50 में भी नहीं है, सोचिए आप
जी।
तो ओवरऑल इंडियंस के लिए ये कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए अच्छा है, इसमें मैं इससे ज्यादा मैं कोई बहुत परफॉर्मेंस वाइज मैं इसमें कोई बहुत चीज नहीं देख रहा हूँ।
चलिए अब निकलते हैं शतरंज की ओर चलते हैं। सिंगापुर में विश्व शतरंज चैंपियनशिप में ग्रैंड मास्टर डी गुकेश और विश्व चैंपियन चीन के डिंग लिरेन के बीच चौथे दौर की बाजी ड्रॉ रही। दोनों खिलाड़ियों ने 42 चाल के बाद बाजी ड्रॉ कराने पर सहमति जताई है, तो क्या कुछ रहा है इस पूरे मुकाबले पर, सुनते हैं ये रिपोर्ट।
42 चाल की इस बाजी में दोनों खिलाड़ियों ने गेम को जारी रखने के लिए काफी समय तक कड़ी मेहनत की। दोनों ने छोटी छोटी गलतियां भी की लेकिन स्थिति पूरी तरह बराबरी की रही। लिरेन ने आज अच्छी शुरुआत की लेकिन गुकेश ने अच्छा कमबैक किया और विरोधी की चालों का सटीक जवाब दिया। लिरेन ने भी सुरक्षित खेलने का फैसला किया और कोई जोखिम नहीं लिया। हालांकि दोनों ने कुछ चालों पर सोचने में बहुत अधिक समय बिताया और खेल ड्रॉ में बदल गया। 14 बाजी के मुकाबले में दोनों खिलाड़ियों के पास अब 2-2 अंक हैं। कल पांचवें गेम में गुकेश सफेद मोहरों से खेलेंगे। लिरेन ने पहले गेम में सफेद मोहरों से जीत हासिल की थी, दूसरी बाजी ड्रॉ रही थी। इसके बाद गुकेश ने तीसरी बाजी जीतकर मुकाबले को बराबरी पर लाया था। अभिषेक कपिल, स्पोर्ट्स कैन।
तो राकेश जी, सबसे कम उम्र का विश्व चैंपियन गुकेश को हम देखने के लिए तैयार है या ये मैच कैसे
हो सकता है, क्योंकि जिस अंदाज में उन्होंने अपना थर्ड गेम जो जीते थे पहला हारने के बाद
जी।
वो कॉन्फिडेंस तो मुझे दिखा, और आज भी मैं देख रहा था तो जैसे वो खेल रहे हैं, ब्लैक पीसेस थे आज उनके पास। और डिंग लिरेन ने आज क्या किया कि अपने जो नॉर्मल लाइन खेलता है वो नहीं खेला है, थोड़ा सा डिफरेंट खेला है, थोड़ा सा एक यू नो ओपोनेंट को थोड़ा सा एक डिफिकल्टी में डालने के लिए उसने एक अलग चाल खेली जो नॉर्मली नहीं खेलता है। लेकिन गुकेश प्रिपेयर्ड आए थे, हालांकि शुरू में थोड़ा वक्त लिया उन्होंने खेलने के लिए, लेकिन मिडिल गेम के बाद मेरे ख्याल से इक्वल हो गई थी पोजिशन, क्योंकि रूल्स ऐसे हैं इस टूर्नामेंट के, इस पर्टिकुलर मैच के, कि आप 40 मूव से पहले आप ड्रॉ ऑफर नहीं कर सकते। तो ड्रॉइश पोजिशन ही थी, तो वो एक 38 मूव तक लेके आ गए, वो दोनों के पास वक्त था उस टाइम। फिर उन्होंने फटाफट जो है मूव रिपीट कर दिए, यू नो लाइक परपेचुअल, यू नो लाइक उसको बोलते हैं परपेचुअल चेक्स, क्योंकि आप चेक देते रहेंगे, मैं हटता रहूंगा, फिर चेक, फिर हटे, फिर चेक, फिर चेक, और उसी स्क्वायर पे आ रही है। जब मैं रिट्रीट करता हूं पीस को तो उसी स्क्वायर पे आ रहा है, तो पोजिशन अगर बोर्ड के ऊपर 3 बार रिपीट हो जाए, अगर मैं एक फोटो खींचूं बोर्ड का तो 3 मूव्स के बाद भी सेम फोटो निकले, तो इसे कहते हैं फोटोग्राफिक पोजिशन, और यहाँ पे ड्रॉ हो जाता है, तो ये टेक्निकल ड्रॉ इसको मान के चलते हैं और ड्रॉ एग्री हो गया उसके बाद।
तो गुकेश के क्या मजबूत पक्ष हम देख रहे हैं यहाँ पर, या क्या मजबूत पक्ष?
देखिए, पक्ष जो उनके हैं वो हैं उनकी जो एबिलिटी है कैलकुलेट करने की, कम टाइम में एक लंबा सीक्वेंस ऑफ मूव, 15-18 मूव डीप वो देख लेते हैं, इतना एक नॉर्मल ग्रैंड मास्टर जो है इतना देख पाता है, मगर ये जिस एक्यूरेसी से देख रहे हैं पिछले 2 साल से, पूरा वर्ल्ड चेस इनकी तरफ देख रहा है कि इतने बेस्ट मूव्स ये कैसे चुन पाते हैं, क्योंकि हर मूव के बाद इतनी पॉसिबिलिटीज होती हैं, आप कुछ भी खेल सकते हैं, लेकिन उसमें जो बेस्ट मूव है, जो कंप्यूटर जो कि बहुत एडवांस्ड कंप्यूटर्स हैं आजकल, वो जो सजेस्ट करते हैं मूव कि इसमें सारा कैलकुलेट करता है वो फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में, और वो आपको दिखाता है कि ये मूव अगर खेलेंगे तो ये बेस्ट है। गुकेश सोच के जितनी देर में ह्यूमन माइंड काम कर सकता है उतनी देर में वही बेस्ट मूव जो आम इंसान को दिखे ना दिखे, गुकेश को ज्यादा बारी वो बेस्ट मूव दिखती है।
okay.
तो इसलिए उनके गेम को जो हम देख रहे हैं पिछले एक कम से कम 2 साल में कमाल की कंसिस्टेंसी रही है, और डिंग लिरेन जो है वो भी बहुत सॉलिड खिलाड़ी हैं।
okay.
हालांकि उनका फॉर्म और गुकेश का फॉर्म अगर हम पिछले 1 साल से देखें तो गुकेश का फॉर्म बहुत बेटर रहा है, लेकिन मैच होता है, उसका एक प्रेशर अलग है। जैसे आज डिंग ने भी बोला कि जब मैं पहला गेम खेल रहा था उसके साथ जो वो जीते, उन्होंने कहा कि मुझे एक ये उम्मीद थी कि ये लड़का है नर्वस हो जाएगा, और मैं उसी हिसाब से मैंने पोजीशन मैंने लगाई और ये नर्वस हुआ और मैं जीता।
ओके, चलिए अभी 14 बाजियों का खेल है, मुकाबले चलते रहेंगे, अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। क्रिकेट की ओर रुख कर लेते हैं। ओवल में भारत और प्रधानमंत्री 11 के बीच 2 दिन का क्रिकेट अभ्यास मैच कल से शुरू होगा, और पहले दिन मौसम पूर्वानुमान में भारी बारिश की संभावना भी जताई जा रही है, लेकिन जो अच्छी खबर निकल के आई है राकेश जी कि शुभमन गिल आज कैनबरा में टीम अभ्यास में दिखे, बल्लेबाजी में वापसी की, तो ऐसे में अब टीम कॉम्बिनेशन क्या बनेंगे 6 तारीख से जो वाली डेट में होने वाले, रोहित भी है, शुभमन भी है, कौन इन होगा, कौन है?
देखिए मैं तो इस टीम में कम से कम 3 चेंजेस देख रहा हूँ।
ओके,
जुरेल पडिकल अगर आप शुभमन गिल को इंक्लूड करने के लिए ही खिला रहे हैं या उसकी सिर्फ मैच फिटनेस देखने के लिए खिला रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा 3 चेंज, नहीं तो 2 चेंज तो मैं देख ही रहा हूँ। रोहित आएंगे और मेरे ख्याल से अश्विन आएंगे वॉशिंगटन सुंदर की जगह, क्योंकि एक ऑफ स्पिनर हमको चाहिए, एक अच्छा ऑफ स्पिनर चाहिए उस विकेट पे, क्योंकि ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अश्विन का रिकॉर्ड जो है एडिलेड में 2018 में 2021 में अच्छा रहा है उनका, तो मैं उस हिसाब से बोल रहा हूँ। और पिंक बॉल है, जो लास्ट टाइम भी हमने यहाँ जो मैच खेला था पिंक बॉल में, सेकंड इनिंग में हम लोग 36 में ऑल आउट हो गए थे
जी।
तो कम से कम वो उसकी जो एक बड़ी दर्दनाक यादें हैं तो उसको हमको मिटाना है। रोहित तो आएंगे वापस, तो मैं अगर कहूं कि अगर मैं 3 चेंजेस लेके चलता हूं, रोहित, शुभमन गिल और अश्विन, तो इनकी और ये तीनों जिनकी जगह आएंगे वो मेरे हिसाब से होंगे पडिकल, जुरेल
जी
और वॉशिंगटन सुंदर।
तो
बाकी टीम तो मतलब अकोमोडेट कर सकते हैं, 2 चेंजेस भी हो सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम 3 चेंजेस हो सकते हैं।
ये अभ्यास मैच कितना फायदेमंद रहेगा टीम के लिए?
देखिए पिंक बॉल से खेल रहे हो आप, थोड़ा बहुत आपको वो चाहिए, क्योंकि इंडिया जो है ऑस्ट्रेलिया से बहुत कम पिंक बॉल खेलता है, मतलब ऑस्ट्रेलिया नॉर्मली अपना जो उनका शेड्यूलिंग होता है बड़ा टैक्टिकली करते हैं वो लोग, खासकर इस बार तो इंडिया को उन्होंने तंग करने के लिए किया ये शेड्यूल कि पर्थ में जहां पे वो उस स्टेडियम में कभी नहीं हारे थे वहां पहला मैच रखा, दूसरा मैच उन्होंने सीधा उनको दिया, पिंक बॉल दिया डे नाइटर, क्योंकि लास्ट टाइम वो बड़े आराम से जीत गए थे हमसे, हम लोग 36 पे जब ऑल आउट हो गए थे मैंने बताया, तो इनको ये था कि ये 5 मैच की श्रृंखला है, नॉर्मली जो होता है बॉर्डर गावस्कर 4 मैच का होता है
जी।
और पिछले 4 जो श्रृंखलाएं हुई है भारत हर एक श्रृंखला को 2-1 से जीता है।
okay.
तो इस बार उन्होंने कहा कि हम अपने 5 वेन्यूज जो हैं, तो इस बार ऑस्ट्रेलिया के जो 5 वेन्यूज हैं 5 जगह मैच हो रहा है बीजेटी का, और वहां पे इनका ये था, तो ये सिर्फ प्रैक्टिस मैच है, इस प्रैक्टिस मैच में आप देखेंगे कि 11 से ज्यादा लोग खेलेंगे
जी। चलिए और 2 खबर और है हमारे पास क्रिकेट की। दुबई में एसीसी पुरुष अंडर 19 एशिया कप क्रिकेट प्रतियोगिता में कल भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा, और एक और जो खबर आ रही है चैंपियंस ट्रॉफी की, पाकिस्तान में होने वाले चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट प्रतियोगिता के लिए अब तक सहमति नहीं बन पाई है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी के कार्यकारी बोर्ड की चैंपियंस ट्रॉफी के कार्यक्रम को लेकर बुलाई गई आपात बैठक में कोई सहमति नहीं बनी, क्या देख रहे हैं आप कल फिर से बैठक होने?
बहुत सरप्राइजिंग है क्योंकि सभी लोगों को इंतजार है कि कम से कम शेड्यूल आ जाए, अभी तक यही नहीं पता है कि मैच कहां होगा तो शेड्यूल कहां से बनाएंगे, तो ये मेरे ख्याल से 24 घंटे में हमारे पास इसका उत्तर होगा।
चलिए हॉकी का रुख करें तो ओमान के मस्कट में पुरुष एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट में वर्तमान चैंपियन भारत का मुकाबला कल शाम 7:15 बजे से चीनी ताइपे से होगा, ये रिपोर्ट सुनते हैं।
मस्कट में पुरुष जूनियर एशिया कप में भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम ने कल जापान को संघर्षपूर्ण मुकाबले में 3-2 से हराकर लगातार दूसरी जीत दर्ज की। थोकचोम किंगसंग सिंह ने 12वें मिनट में भारत के लिए खाता खोला, लेकिन जापान के नियो सातो ने जल्द ही गोल करके बराबरी हासिल कर ली। दूसरे हाफ में दोनों टीमों के बीच पेनल्टी कॉर्नर पर जोर आजमाइश हुई। रोहित ने 36वें मिनट में गोल कर भारत को फिर से बढ़त दिलाई, लेकिन नियो सातो ने एक बार फिर गोल करके स्कोर 2-2 से बराबरी पर ला दिया। अरिजीत सिंह हुंदल ने 39वें मिनट में गोल कर भारत को निर्णायक बढ़त दिला दी। भारतीय टीम ने प्रतियोगिता में अपने दोनों मैच जीते हैं। पहले मैच में भारत ने थाईलैंड को 11-0 के बड़े अंतर से हराया था। रविवार को भारतीय टीम अंतिम ग्रुप मैच में कोरिया से खेलेगी। शक्ति सिंह, स्पोर्ट्स स्कैन।
तो जूनियर टीम इन फॉर्म है, प्रतियोगिता में फेवरेट दिख रही है आपको राकेश?
बिल्कुल,
चलिए
इसमें कोई शक नहीं।
तो राकेश जी आप स्टूडियो में आए, आपने विस्तार से सभी खबरों पर हमारे साथ चर्चा की, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
बहुत बहुत शुक्रिया शशांक।
चलते चलते श्रोताओं आपको हेडलाइंस एक बार फिर से बता देते हैं। लखनऊ में सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप में लक्ष्य सेन, प्रियांशु रजावत, पीवी सिंधु और उन्नति हुडा सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंचे। डबल्स में 5 भारतीय जोड़ियों ने अंतिम 4 में प्रवेश किया। सिंगापुर में विश्व शतरंज चैंपियनशिप में ग्रैंड मास्टर डी गुकेश और विश्व चैंपियन चीन के डिंग लिरेन के बीच 4थे दौर की बाजी ड्रॉ रही। और ओवल में भारत और प्रधानमंत्री 11 के बीच 2 दिन का क्रिकेट अभ्यास मैच कल से, और दुबई में एसीसी पुरुष अंडर 19 एशिया कप क्रिकेट प्रतियोगिता में कल भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। तो फिलहाल शशांक और स्पोर्ट्स कैन की पूरी टीम को अनुमति दीजिए। गुड नाइट, शुभ रात्रि।